नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई, ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं, जानते हैं फिर भी हम कोशिश करते हैं। कितनी लिख सकते हैं हम प्रभु तुम्हारी अच्छाई।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में मीका नबी की पुस्तक के द्वारा उन आशीषों को पाया है। आज हम अपने जीवन में उन वचनों को आने देंगे। आज जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और आज फिर से परमेश्वर के दास के द्वारा उन वचनों को सीखते हैं, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक प्रकार की कमी घटियों को, त्रुटियों को उनके सामने लाएं ताकि वे समझने पाएं और उससे छुटकारा पा सकें। आज अपने जीवित वचन के द्वारा हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप आशीषित करें, हम सब से बोले और बातचीत करें, अपनी महिमा लें। जिस प्रकार पिछले अध्ययन में सहायता दिया, आज भी हमें सहायता प्रदान करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देखते हैं कि मीका बड़े दुख से भविष्यवाणी करता है क्योंकि परमेश्वर के दंड का संदेश उसके दिल को बहुत दुख पहुंचाता है। इसी कारण वह कहता है, हाय मुझ पर। इसराइल की दशा उस समय ऐसी थी कि भला मनुष्य खोजना कठिन था। जी हां, वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते थे। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते थे। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है और धनवान लोग अपने मन की दुष्टता वर्णन करते हैं। इसी प्रकार वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है। उनके दंड का दिन आ गया था। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। मीका 7 और उसके 10 पद में लिखा है, तब मेरी बैरिन जो मुझसे यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। ध्यान दीजिए, लिखा है कि सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। परमेश्वर तो विजयी होगा ही, परंतु दुख की बात तो यह है कि पापों के कारण इसराइल को दंड मिलेगा। उनके बैरियों का प्रश्न था, तुम अपने परमेश्वर की उपासना पर गर्व करते हो, तुम्हारा परमेश्वर अब कहाँ है? आज भी लोग हमसे यही कहते हैं, वह इस समय तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता है? तुम तो कहते थे कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी सहायता करेगा। सच तो यह है कि बैरी परमेश्वर की धार्मिकता को देख नहीं पा रहे थे। वे समझ नहीं सकते थे कि उन्हें दंड देकर परमेश्वर अपनी धार्मिकता ही का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को पुनर्स्थापित करेगा, तब वह उन देशों को जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनका सर्वनाश करना चाहा, वह उन्हें दंड देगा। उस समय लिखा है वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। उस समय उन पर अशुरों का संकट मंडरा रहा था, अतः अशुरों को बैरी कहा गया है। परंतु निम्नलिखित दो पदों से संकेत मिलता है कि उनका बैरी एक और है जो अंतिम होगा। मीका इसराइल के सर्वनाश की घोषणा के बाद अब उनके पुनरुद्वार की भविष्यवाणी करता है। धर्मशास्त्र के अनेक संदर्भों में इसराइल को दाख कहा गया है। यशाया की दाख की बारी के गीत पर विशेष ध्यान आप दें, यशाया नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1-7 पद में मीका जिस सीमा के बढ़ाने की चर्चा करता है, वह दाख की बारी का बाड़ा है। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मीका की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 पद। मीका उसके 7 और 11 पद में लिखा है, तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। इसराइल के इतिहास के आरंभिक दिनों में परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में रखा कि वे एक जाति बने। उसके पश्चात परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में बाड़े में रखा और उन्हें व्यवस्था देकर एक विशेष जाति बनाया तथा उन्हें अंतर जातीय विवाह करने से रोका। उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें अश्शूर देश और बेबीलोन में दास बनाकर भेजा। संसार में उन्हें एक सेवा पूरी करनी थी, अपनी समृद्धि और संसार में तितर बितर रहने के समय की। हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार इनसे कार्य लेता है, अर्थात दंड के द्वारा सिखाता है। मीका 7 अध्याय के 12 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। मेरे मित्रों, अध्याय 4 में हमने भविष्यवाणी देखी है कि प्रभु यीशु के 1000 वर्षीय राज में सब जातियां, उनके बैरे भी अर्थात अश्शूर, सियोन आएंगे। लिखा है, उस दिन अश्शूर से और मिस्र के नगरों से और मिस्र और महानद के बीच के और समुद्र समुद्र और पहाड़ पहाड़ के बीच के देशों से लोग तेरे पास आएंगे। और मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 2 पद में वह कहता है, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तथापि मीका उन्हें स्मरण दिलाता है कि ऐसी आशीषों से पूर्व उन्हें दंड दिया जाएगा और यह दंड उनके लिए होगा ताकि वे सीखें और जानें। मीका नबी की पुस्तक 7 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, तो भी यह देश अपने रहने वालों के कामों के कारण उजाड़ ही रहेगा। देखिए, प्रजा और देश एक साथ जुड़े हुए हैं। वह देश आज के समान निर्जन कभी नहीं था। जब परमेश्वर उन्हें आशीषें देगा तब वह देश भी आशीषों से भरपूर होगा, परंतु अभी ऐसा नहीं है। मेरे मित्रों, हम अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं समापन प्रार्थना। अब मीका अति उत्तम रूप से उन्हें चरवाहे की निगरानी में सौंपता है। तो आइए हम पढ़ें मीका 7 उसके 14 पद को। लिखा हुआ है, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की, जो कर्मेल के वन में अलग बैठती हैं। वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें। लिखा है, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर। मीका 6 अध्याय उसके 9 पद में उनके दंड की लाठी का उल्लेख किया गया था, परंतु सांत्वना की लाठी भी है। भजन संहिता 23 उसके 4 में लिखा है, तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जी हाँ, यह चरवाहे की लाठी है जिससे भेड़ों की सुरक्षा एवं सहायता की जाती है और उन्हें अनुशासन में भी रखा जाता है। उन्हें अनुशासन के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाता है। लिखा है, लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की रखवाली कर। परमेश्वर हमें अनुशासन में रखता है और हमें निर्देश देता है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यहां पर वह कहता है, जो कर्मेल के वन में अलग बैठती हैं, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें। मेरे मित्रों, ये दो स्थान उत्तरी भाग में यर्दन पार बहुत अच्छी चारागाहें हैं। मीका अति सुंदर पाप स्वीकारन और अधीनता के साथ परमेश्वर के समक्ष आता है। उसके अपने पाप और इसराइल के पाप भी वह रखता है। हम तो अपने पापों को अनदेखा कर अन्यों के पापों की क्षमा मांगते हैं, परंतु इसराइल के भविष्यद्वक्ता उनके पापों में अपने को भी गिनते थे, अर्थात अपने आप को भी शामिल करते थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर का उत्तर क्या है। परमेश्वर मीका की प्रार्थना का उत्तर देता है। अधिकांश टीकाकारों की राय में यह वह समय है जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज करेगा। तो आइए हम देखें मीका 7 उसके 15 पद को। लिखा है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। परमेश्वर ने इसराइलियों को चमत्कार करके मिस्र से निकाला था, आप इसे जानते हैं, परंतु बेबीलोन से निकालने में उसे चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि उनका स्वदेश लौटना एक महान घटना थी। परमेश्वर कहता है कि उन्हें स्वदेश में पुनः स्थापित करते समय घटनाएं वैसी चमत्कारी होंगी जैसी मिस्र से उन्हें निकालने के समय हुई थी। आज तक तो ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है। अतः हम यह जान लें कि परमेश्वर ने अपनी यह भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं की है। मीका 7 उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं, अन्य जातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी, वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएंगी और उनके कान बहरे हो जाएंगे। जब परमेश्वर उन्हें स्वदेश लाएगा तब लोग ऐसा अचंभा करेंगे जैसा मिस्र से निर्गमन के समय, अर्थात मिस्र से निकलते समय लोगों ने अचंभा किया था। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में राहाब वेश्या कहती है, हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। जी हां, परमेश्वर ने अपनी प्रजा की कैसी सुधि ली, इसका समाचार संपूर्ण प्रदेश में व्याप्त हो गया था, फैल गया था, लोगों को मालूम हो गया था। मीका 7 उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वे सर्प के समान मिट्टी चाटेंगी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं की भांति अपने बिलों में से कांपती हुई निकलेंगी। वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझ से डरेंगी। मेरे प्रियो, ये उन देशों का उल्लेख है जिन्होंने इसराइल का नाश करने की युक्ति की थी, परंतु जिस समय परमेश्वर अपनी प्रजा इसराइल की सुधि लेगा उस समय लिखा है वे हमारे परमेश्वर यहोवा के पास थरथराती हुई आएंगी और वे तुझ से डरेंगी। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्तुति गान। मीका अब उच्च स्वर में कहता है और वह एक प्रश्न भी पूछता है। मीका 7 अध्याय उसके 18 पद में, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं और हम इसे स्वीकार करते हुए देखते हैं, इसे सब विस्तार रूप में हम देखेंगे, परंतु मीका कहता है कि परमेश्वर जो है उसके कारण वह ऐसा करेगा। हम इसी क्रम में आगे भी देखते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। इसराइल के पाप के कारण वे कुछ समय के लिए देश से बाहर किए गए थे, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। उनके पाप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को निराधार नहीं कर सकते, न ही उसकी वाचा को रद्द कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर की संतान पाप में गिरकर उद्धार से वंचित नहीं होता है, विश्वासी के लिए पाप करना परमेश्वर से ताड़ना पाना है। यदि वह परमेश्वर के समक्ष अपने पाप को स्वीकार करके अपना लेखा साफ ना करे, परमेश्वर बड़े अनुग्रह से पाप क्षमा करता है। आप जानते हैं उड़ाव पुत्र ने पिता से दंड नहीं पाया, उसका दंड परदेश में था। परंतु आप एक बात को निश्चित जाने कि परमेश्वर की संतान पाप करके बचेगी नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यह धर्म शास्त्र में हर जगह पर पाया जाता है। वचन में लिखा है तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है। मैं एक अति विचित्र बात बताता हूं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक बात ऐसी है जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं परंतु परमेश्वर नहीं देखता। यह बात अनुचित एवं भक्तिहीन प्रतीत होती है, वरन दुर्विनीत प्रतीत होती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उपहासजनक बात कर रहा हूं, परंतु निश्चय जानिए कि यह एक गंभीर बात है। मीका एक अत्यधिक गंभीर प्रश्न पूछता है, तेरे समान परमेश्वर कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर इसी जटिल प्रश्न में है। प्रसंगवश यह धर्मशास्त्र का एकमात्र स्थान नहीं जहां यह प्रश्न पूछा गया है। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 पद में, जब इसराइल लाल सागर पार कर चुका था तब भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। वे मिस्र से निकले थे जहां बहुदेववाद था। परमेश्वर ने उन पर जितनी विपत्तियां डाली थी वे सब उनके देवताओं के ऊपर थे। फिर जब उनके जंगल में भटकने के 40 वर्ष पूरे होने लगे तब मूसा ने कहा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसके 26 और 27 पद में, हे यशुरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहण योग्य परमेश्वर है और वह गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। यही प्रश्न सुलेमान राजा ने पूछा था, पहला राजा की पुस्तक 8 अध्याय उसके 23 पद में, हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे दास तो अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं। उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। और भजन गाकर भजनकार कहता है, भजन संहिता 113 उसके 5 और 6 में, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। यह प्रश्न निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक, भजन संहिता और अन्य असंदर्भित बाबिल अंशों में पूछा गया है। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर मेरी आरंभिक प्रश्न में है, परमेश्वर ने ऐसी क्या बात नहीं देखी जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने तुल्य और किसी को नहीं देखा है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है? परंतु हम अपने तुल्य किसी न किसी को प्रतिदिन देखते हैं। परमेश्वर अनेक परिप्रेक्ष्यों में बेजोड़ है। मैं मीका की पुस्तक के इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का निकट से निरीक्षण करना चाहता हूं, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है? पहली बात हम देखते हैं, बाइबल का परमेश्वर सृजनहार है। बाइबल का परमेश्वर सृजनहार है, जबकि अन्य जातियों के परमेश्वर सृजित प्राणी हैं। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसके 21 से 23 पद में प्रेरित पौलुस लिखता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। उन्होंने सृजनहार की अपेक्षा सृजित वस्तुओं की आराधना की। मेरे प्रियो, मीका के समकालीन यशाया ने वृक्षों की लकड़ियों से मूरत बनाने वाले अन्य जातियों के लिए लिखा है, यशाया नबी की पुस्तक 44 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, उसका एक भाग तो वह आग में जलाता और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वह मांस भूनकर तृप्त होता फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके एक बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत बनाता है। तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता है और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। और पद 21 में यशाया कहता है, हे याकूब, हे इसराइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इसराइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर हमारा सृजनहार है। मेरे मित्रों, यहां पर बहुत स्पष्ट रीति से यशाया हमें बताता है कि हम सृजित प्राणी हैं, और हम सृजित प्राणी अपने दूसरे सृजित को बनाकर हम उसकी उपासना करते हैं। एक से हम खाना बनाते हैं, और उसी लकड़ी के दूसरे हिस्से से हम एक मूरत बनाते हैं, और हम उसको दंडवत करते हैं, तो वह हमारी क्या सहायता कर सकता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा सृजनहार परमेश्वर है, जिसने मुझे, आपको, इस संसार को बनाया है। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम उस सत्य परमेश्वर को ढूंढें, उसे पाएं और उसकी आराधना करें जो हमारा सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आपने सत्य को जान लिया है? क्या आज तक आपने सत्य को खोजा है? क्या आपने खोजने की कोशिश की है? यदि नहीं, तो मेरे मित्रों, आज इस वचन के प्रकाशन के आधार पर आप सत्य को ढूंढें और देखें कि आपका परमेश्वर कौन है, आपका सृजनहार परमेश्वर कौन है, आप किसकी आराधना करते हैं, क्या वह सृजित है या उसे आपने बनाया है, वह कौन है जिसकी आप आराधना करते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे, हर एक श्रोता भाई बहन से यही कहता है कि हम अपने परमेश्वर को जान लें कि हमारा सृजनहार कौन है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप एक अच्छा निर्णय अपने जीवन के लिए अवश्य लेंगे, ताकि आप अपने सृजनहार परमेश्वर की ही आराधना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ऊपर बनाया अंबर, नीचे बनाई ये जमीन, लटकाए बिना सहारे चांद तारे, कहीं रोशनी से अपने रोशन कर दिया, जहां मिट्टी उठा कर तुमने बनाया एक नया इंसान। ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई, ऐसा गिरियारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई।